आपने बोला नहीं।
महाराज में इंतजार कर रहा था, आप कहेंगे तो बोलेंगे।
सर हमको याद कराना है गुरुदेव का
गोविंद कुंड जहाँ पर गोपी ब्रजजन समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, सबका आनंद बढ़ाते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, ऐसे कृष्ण को गोविंद नाम से यहीं पर अभिषेक किया था, इसलिए यह प्रसिद्ध स्थान हुआ गोविंद कुंड। अभी अभी महाराज ने बताया इसी कुंड के तट पर श्री भादुरी मुनि यज्ञ किया करते थे, समस्त ब्रजवासी गोपियाँ यहाँ दूध दही मक्खन घी इत्यादि लेकर के आते थे और यहाँ पर कृष्ण के साथ सखाओं के साथ में कृष्ण गोचारण करने के लिए आते और एकांत निवृत्त स्थानों में गोपियों के साथ में विविध प्रकार के लीला विहार का स्थान इन स्थानों को हम प्रणाम करते हैं, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे।
पैरों में कांटे होंगे, कोई चिंता की बात नहीं, निकाल लेंगे कांटे और चलेंगे तो कुंज जैसे मिलेंगे, उनमें कांटे होंगे, आपके कपड़े भी पकड़ लेंगे। इस तरह से देखिए ये कैसा ये परिक्रमा मार्ग है। बोलो गौ प्रणाम। अब इधर से चलेंगे और जो जो नहीं चल सकते हैं वो गाड़ी से बैठ करके उधर से आएंगे, फिर पुछरी में हम लोगों से भेंट होगी।
चलते चलते अब पुछरी में आए हैं। यह कम कम गोविंद कुंड को पुछरी, यहाँ पर गोवर्धन जी अब यहीं तक शेष है, इनकी पूछ है यहाँ, गाय बैठी है, राधा कुंड के तरफ में उसको मुख ले लो और इधर में पीछे इधर में पूछ है गाय की और गैया ने अपने मुख को अपने पेट में कर रखा, तो मुख आया गोवर्धन में और आंख दोनों है राधा कुंड और श्याम कुंड। गाय का अगला धाग पतला और नीचा होता है गले से और पीछे का भाग ऊंचा होता है, अथवा मोर का अगला भाग राधा कुंड श्याम कुंड में और अपने चोंच को पेट में रखा है, इसलिए आंख तो राधा कुंड और गला वो कुसुम सरोवर से राधा कुंड का भाग वो जमीन में और फिर इधर में धीरे 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 उठता आया है, यहाँ आ करके उसका पिछला भाग अपने पंख को एकदम फैला करके नाच रहा है मणि और गाय बैठी है, उसका पूंछ इधर है मुंह उधर है, इसलिए इसको पुछरी कहते हैं। पुछरी का लौठा भी कहते हैं, लौठा माने लौटना, अब यहीं से हम अब लौटे। उधर में कौन क्या दिशा है, इधर है पूरब और इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण और उस तरफ में पश्चिम, हम लोग गोवर्धन के पश्चिम में वहाँ पर टिके हुए हैं, हमारा पड़ाव वहाँ है और ये कौन सा है उत्तर में दक्षिण, दक्षिण का अंतिम शेष भाग है, यहीं से हम लोग लौटते हैं। बड़े बड़े आचार्य लोग यहाँ तक कि कृष्ण भी अपने सखाओं को माँ को पिताजी को लेकर के परिक्रमा किया, जो नहीं चल सकते थे वो गाड़ियों में बैठ करके आए, बच्चे लोग खाते और कीर्तन करते हुए यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा उन्होंने की। एक बात है, गोवर्धन जी बड़े दयालु हैं, नहीं तो लाख लाख लोग परिक्रमा करते हैं ऐसे ही नहीं, जो परिक्रमा करने आएगा गोवर्धन जी देखते हैं कि इसके मन के अंदर में क्या अभिलाषा है, यदि कोई अभिलाषा कह दिया और नहीं कहा और व्यक्त कर दिया, जैसे दो पेड़ों की जादू को जोड़ दिया, मतलब क्या
गठबंधन, हम गठबंधन चाहते हैं संसार में, बंधन चाहते हैं, हम विवाह करना चाहते हैं, शिवराज जी उनकी पूजा कराते और धन नहीं है तो धन की दे देंगे। और कुछ लोग घर चाहते हैं बनाना, देखें पत्थर को काम पर रखते गए हैं किसी के भक्ति नहीं देते
साहब,
परख करके देते हैं। और भक्त भी उसके ऐसे होते हैं जब किसी को सुंघने नहीं देंगे, जब किसी भावना से कर रहे हैं, वो बहुत गोपनीय चीज है। वो एक अंतिम अभिलाषा लेकर के चलते हैं। क्या चलते हैं? हे गिरिराज गोवर्धन, मन ही मन में कहते हैं बस हमको कृष्ण की प्रिया जी की दासी बना दी, इससे बढ़कर हम पूछते हैं? हम राधा जी की बाल्य दासी। गिरिराज जी यदि सुनते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं, ये भाई इसको मैं कैसे दूं, और दिए बिना रह नहीं सकते और इतनी बड़ी चीज नहीं दे सकते। धन धान्य, इंद्र का स्वर्ग, शांति, शांति माने मुक्ति, मुक्ति भी दे देंगे, किंतु यह चीज बड़ी मुश्किल से देते हैं। देख लेते हैं परीक्षा करके, ये कृष्ण को अपनी सेवा में तो नहीं लगाएगा, उसको नहीं देते, क्योंकि कृष्ण को उनके वशीभूत होना पड़ता है, जिसके अंदर में प्रेम होता है, ये प्रेम सहजी नहीं देंगे, विशेष करके परस्पर का प्रेम नहीं देंगे। अभी आएंगे देखेंगे मूर्या पुनो के समय में कि और समय में लाखों लोग, करोड़ों लोग तब परिक्रमा करते हैं, उस समय रास्ते में खड़े होने की जगह नहीं रहती, इतनी लोग परिक्रमा करते हैं। किस लिए? अभी दंडौती परिक्रमा देखा ना, दंडौत कर रहे हैं, एक एक जगह एक एक सवाल, किस लिए? तुच्छ चीज के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, रोग दूर करने के लिए, इसके लिए सब करते हैं। कृष्ण के प्रेम करने के लिए, मांगने के लिए बहुत बिरले आते हैं, जो भक्तों के संग में जिनका चित्त सुख साफ हो चुका है वही चाहेंगे, और कोई नहीं चाहेगा। आप लोगों से विशेष निवेदन है, गिरिराज जी का शिला, एक शिला के ऊपर में दो शिला चार शिला मत रखेंगे, नहीं तो धन दे करके तरका देंगे। और गठबंधन मत करेंगे पेड़ों का, पीलू के की डालियों को एक साथ, देखो वो पीलू है उसमें फल लगते हैं, तो ये सब में डाली मत बांधना, नहीं तो विवाह हो जाएगा तो दिन चौपट हो जाएगा, माया में फंस जाएगा। बस कृष्ण का प्रेम मांगो और कुछ मत मांगना। ये राक्षसस्थली है, अभी हम इस राक्षसस्थली के उधर में जाएंगे, वहाँ पर एक कदम्ब का पेड़ और एक समाल का पेड़, एक राधा एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सब ऐसे ही जोड़े जोड़े थे। हम लोग अभी आ रहे हैं, 10 वर्ष के अंदर में पेड़ सब सूखने लगे, इस तरह से धीरे 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 सूख रहे हैं। 5000 वर्ष क्या और भी आगे के वृक्ष हैं, ये ऋषि महर्षि लोग हैं, साधारण नहीं, ये ऋषि महर्षि लोग तपस्या कर रहे हैं कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, गोपियों की चरण की रज बनने के लिए। उद्धव जी भी उधर में जाएंगे, दिखलाएंगे जो कहते हैं, वो घाट बने हुए हैं गोपियों के चरण धूलि पाने के। ये रब सब ऋषि महर्षि सब है, यदि कोई पेड़ सूख जाता है समझो कि उसकी तपस्या पूरी हो गई और वो कृष्ण के प्रेम को पा लिया। इस तरह से कोई पेड़ के ऊपर में पैर मत रखना, स्थितियों को बचा करके चलना, गिरिराज की शिलाएं हैं उन पर पैर मत रख देना, गिरिराज के ऊपर में मत चढ़ना, वो स्वयं कृष्ण हैं। इस तरह से अभी हम लोग जाएंगे, रास्ते में आएंगे दो कुंड, नवल कुंड और अस्परा कुंड। नवल कुंड माने नित्य नव नमायन कृष्ण है, और राधा जी अप्सरा है, बड़ी सुंदरी, दोनों ने नृत्य किया, गोपियां ताल बजा रही हैं, लाखों लाखों गोपियों के साथ ने राग किया, और कृष्ण और राधा दोनों जी पिघल करके एक बन गए नवलकुंड और एक बन गए अप्सरा। हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और इसके बाद वहाँ से घूमेंगे। आप लोग कुंडों का पानी बड़े प्रेम के साथ में आचमन और शीत पर धारण करके आगे धीरे धीरे बढ़े और जो कथाएं होंगी हम बीच बीच में बोलते जाएंगे। बोलो गिरिराज धरण जय जय श्री स्टोमिक। तो हर मौजी एट गोवर्धन, हर माउथ इज एट गोवर्धन एंड हर आईज आर एट राधा कुंड एंड श्याम कुंड एंड दिस इज अ टेल। सिमिलरली ही हैज गिवन अनदर सिमिली ऑफ पीकॉक। द पीकॉक इज स्टैंडिंग, दिस पोर्शन इज द टेल ऑफ पीकॉक। वी हैव सीन गिरिराज इन द फुल साइज हियर एंड नाउ इट इज द टेल। आईज ऑफ द पीकॉक इज राधा कुंड एंड श्याम कुंड एंड इट्स बीक, it has turned its beak back to its stomach, so Govardhan itself where we were staying, that is the beak of यहाँ पर हम करीब करीब 50 वर्ष पहले आए और तब से प्रति वर्ष मैं परिक्रमा करता हूँ। 50 वर्ष हो गए, गुरु जी के साथ में पहली बार आया, उनके साथ में दो तीन चार बार आया और इसके बाद में खुद 45 वर्ष हो गए। 50 वर्ष पहले घनाघोर यहाँ जंगल था, झाड़ियाँ थी, गुल्म थे, कुंज थे, धीरे 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 पेड़ सब सूख रहे हैं। हमने देखा था हजारों कदम्ब के पेड़ और हजारों कमाल के पेड़, एक एक पेड़ एक एक जोड़ी यहाँ पर सब थे। कुंड में सुंदर पानी था और इतना सुंदर यहाँ पर कुंज जैसा लगता था। कलिकाल आ गया, साधु और गुंडे है ना, साधु एक तरफ में गुंडे, गुंडों की बढ़ती साधुओं की कमी, कमाल और ये कदम राधा जी और कृष्णा और उनकी सखियां सहेलियां। अब आजकल गुंडे हो गए कौन, बबूल समाज सब, यहाँ के बबूल वो दूसरे बबूल हैं। मैं कोरोना की दृष्टि से देख रहा हूँ, कभी काल जितना बढ़ता जाएगा ये सब ऋषि महर्षि जो गोपी भाव के लिए यहाँ पर साधन भजन कर रहे हैं धीरे 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 अंतर्ध्यान हो जाएंगे, बबुल के पेड़ रह जाएंगे, वो भी रहेंगे कि न जाने। गिरिराज इतने ऊंचे से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, यही पराघव पंडित की गुफा है महाप्रभु जी के परिकर से, जिन्होंने श्यामानंद प्रभु श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर को लेकर के परिक्रमा कराई थी आज से 500 वर्ष पहले। उसके पहले नित्यानंद प्रभु जी ने, महाप्रभु जी ने परिक्रमा की और सब लोग यहाँ पर राघव पंडित राघव जी से साथ में मिले, यहीं पर गुफा थी और उनको लेकर के 84 को मंडल की परिक्रमा थी। गुरु जी के साथ में हम लोग आए थे, वहाँ पर बैठे थे। आजकल वहाँ पर बैठने का भी स्थान नहीं है, तो यहाँ पर गुहा है, वहीं पर लेकर के भजन करते थे, माधुकरी करते थे। आजकल तो साधु संत लोग यदि रहे उनको काट देंगे 2 पैसे के लिए, और आज का साधु 2 पैसा लिए बिना तो मानेगा नहीं, घड़ी चाहिए ही और कपड़े अच्छे चाहिए ही, साल चाहिए, वो उसको काट करके ले देंगे। यहाँ तो वही रहे जो चप्पल नहीं, जूता नहीं, छाता नहीं, कंबलिया नहीं, डोर कॉफिन हो, माधुकरी से मांग करके बस वहीं पर खा ले और सब ऐसा भजन करे, कभी चना कभी उभी मना ऐसा भजन करे। साधारण लोगों के लिए ये सब स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। राक्षस स्थली है, अब लुप्त हो रही है, अब तो छाया भी नहीं है। कभी ऐसा घना छाया थी, कदम बड़े बड़े सब धीरे धीरे सब हम इस स्थली को प्रणाम करें, उस स्थान को हम लोग परिक्रमा करके आए हैं और इसे प्रार्थना करें हम आपकी कभी भी जन्म जन्मांतर में आप लोगों की सेवा कर सकें। ऐसी प्रार्थना करके अब हम लोग क्रम पर चलेंगे। जय श्री राधे। जय जय
श्री राधे। अपराध को ये दूर कर देती हैं। इंद्र का अपराध हुआ, इंद्र का अपराध हुआ और अपराध होने से डर गए, फिर अकेले नहीं आए, दुर्भि के पास में गए। मैया कृष्ण के चरणों में अपराध हो गया, हमें क्षमा नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा शरणागत होता हूँ। कृष्ण तुम्हें सब प्रकार से सेवा करते हैं तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी बात को हटा नहीं सकेंगे, इसलिए आप मेरे साथ में चलें और मेरा अपराध क्षमा करें। उनको लेकर के आए यही है सूफी कुंड, और इनके साथ में ऐरावत आया। इंद्र जी का कुंड पीछे रह गया, ये सूफी कुंड ऐरावत कुंड आगे आएगा। यहीं से फिर वो लोग गए और गोविंद कुंड में उनका अभिषेक किया, उनका नाम गोविंद रखा। बहुत स्तुति की सूफी के कहने से इंद्र को क्षमा कर दिया, किंतु पूर्ण रूप से अभी क्षमा नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया। इसलिए नवदीप में जाकर के वहाँ पर गोद्रुम कुंज है, गोद्रुम यहाँ सर सुरभि कुंज, वहाँ पर गोद्रुम कुंज, गोद्रुम कुंज में वहाँ पर पीपल का एक बहुत या बट का वृक्ष था, उसी के अंदर में बैठी और वहीं पर सुरभि कुंज में जाकर के तपस्या की। इंद्र ने भी तपस्या की और फिर वहीं पर उनका परम उदार कृष्ण ही गौर रूप में है, इसलिए उनको क्षमा कर दिया। इसलिए जब भी किसी के अपराध है, अनजान में भी वैष्णव अपराध हो गया जरूर है, नहीं तो कृष्ण नाम लेने से भी हृदय में रोमांच कंप अश्रु ये सब नहीं होता है, कृष्ण का दर्शन नहीं होता, कृष्ण और कृष्ण नाम दोनों एक है। किन्तु फिर भी क्या, यदि हम लोग प्रणाश्रय ग्रहण करें, उनका शरण में आए, तो वो कृपा करके हमको इस अपराध से हमें दूर कर देंगी और कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में हो सकता है। इसलिए हम परम करुणामयी सुरभि माता जी के चरणों में हम आए हैं। हमारे जितने जन्म जन्मांतर के अपराध हैं, अनर्थ हैं, इसको वो दूर करें, यही प्रार्थना करना है। कृष्ण का की सेवा हमें मिले, कृष्ण का प्रेम हमें मिले, ब्रज का प्रेम मिले, यही इनसे प्रार्थना करना है। अभी यहाँ पर सभी लोग आचमन करके बैठी है और यहीं पर ठाकुर जी का भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद यहाँ पर दिया जाएगा, आपका लेवा कृष्ण का प्रसाद। आप लोग यहाँ से कुछ प्रसाद सेवन करके तब फिर धीरे धीरे हम चलेंगे, वहाँ से गोवर्धन पार करके हम लोगों का भंडारा वहाँ पर हो रहा है, सब चीज तैयार हो रही है। हम लोग करीब करीब 1 बजे के पहले तक वहाँ पर पहुँच जाने की चेष्टा करेंगे। चलिए जय श्री राधे।
और इसके बाद में बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे, गंगा बरसाना सामने वन और वन में गोपियाँ वहाँ पर भ्रमण करती और उद्धव भ्रमण करती। अंत में उद्धव जी ने प्रार्थना की कि मैं घास बन जाऊं और गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर में आ जाए। तब उद्धव जी पासी में श्याम कुटी एक है, उस तरफ में कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के किनारे भी घास बन गए। घास बनने के बाद में गोपियों की चरण की धूलि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों की ऐसी क्या महिमा है, अभी सुनिए थोड़ा सा, तब फिर इसके बाद राज भी समझेंगे। जब देखेंगे गिरिराज हो, ये चल नहीं रही है, चल नहीं पा रहे, पसीने से सर्वमुख लाल हो गया है और पैर एकदम सूख गए हैं, चल नहीं सकती, घट दाखिल और जो चलाकी हमारे समान चलाकी चतुराई कर रहे हैं उनको नहीं करेंगे, आज जो सचमुच में ऐसा कब करके चल रहे हैं उनको जरूर कृपा कर। मैं तो उनसे कहता हूँ कि जैसे तैसे जो कोई आज आ गया है, जो कोई भी इसमें सम्मिलित है, सब पर कोई नाम प्रार्थना
गुरु वैष्णवों के अनुगत में हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करते करते श्री उद्धव कुंड पर पहुँचे हैं, जहाँ अभी महाराज जी ने सूत्र रूप में वर्णन किया है। श्री उद्धव जी जो कि कृष्णस्य दयित सखा वृष्णाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। वृष्णियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और कृष्ण के दयित सखा हैं, मंत्री हैं, सब प्रकार से उद्धव जी यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। बुद्धे बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, जो कि इतने बुद्धिमान होने के कारण बृहस्पति ने अपना शिष्य बनाया, समस्त शास्त्रों का उनको अध्ययन कराया। बुद्धि सत्तम उद्धम, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी को कहा जाता है तथा बुद्धिमानों में भी सबसे ज्यादा चतुर। और उद्धव उद्गत तमो जस्मात इति उद्धव, जिनके अंदर इस संसार का कोई भी प्राकृत भाव नहीं, नित्य सिद्ध परिकरों में कृष्ण के अतिशय प्रिय जो उद्धव जी, और जिनके दर्शन मात्र ही उत्सव आनंद है, ऐसे उद्धव को देख करके जबकि ब्रज विलासी श्याम सुंदर मथुरा पहुंचे, कंस का वध करके देवकी वसुदेव को जेल खाने से छुड़ाया, महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन में बैठा दिए, इसके पश्चात उज्जैन से उज्जैन में गए, 64 दिनों में 64 कला विद्याओं का अभ्यास किया, वहां से लौट करके आए, यमुना का दर्शन किया, ब्रजवासियों के विरह प्रेम का स्मरण हो उठा, उस प्रेम में उमड़े हुए प्रेम में व्याकुल हो करके अतिशय अधीर बने श्याम सुंदर, उद्धव को भेजा ब्रज में ब्रजवासियों के प्रिय सांत्वना करने के लिए। कुछ संदेश कुछ मधुर वचन उद्धव जी को कह करके भेजा कि इन इन वचनों के द्वारा ब्रजवासियों को ब्रज गोपियों को नंद बाबा आदि को सांत्वना देना। तो नंद गांव में पहुंचे, वहां जा करके सांत्वना क्या देने थी, जबकि नंद बाबा इतना उनका वात्सल्य प्रेम है, जिस प्रेम की महिमा को देख करके उद्धव जी स्वयं विस्मित हो गए, उनकी सारी बुद्धि विचलित हो गई कि कैसे समझाए नंद बाबा को, जो इतना कृष्ण के विरह में अधीर होकर के रो रहे हैं, क्या उनको मना करें कि आप रोए नहीं, या कहें कि आप और भी रोए, कृष्ण के लिए रोना तो बड़े सौभाग्य का विषय है, तब सांत्वना कहा। इसलिए कोई भी वाक्य उनके मुंह से नहीं निकला, जो कि अंत में यही कहा कि कृष्ण तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में निवास करते हैं, आप बड़े सौभाग्यवान हैं, जो कि कृष्ण जैसे परब्रह्म स्वयं भगवान को आपने पुत्र रूप में प्राप्त किया है। इस बात को सुन करके नंद बाबा की आंखों की आंसू सूख गए और उद्धव जी से बोले कि अरे उद्धव तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण परब्रह्म है, स्वयं भगवान है, ये तो हमें पता नहीं, हमने सुना था दरगाह के आज
जैसा हरि कठोर गीत सुना गोपियों जैसा प्रेम जगत इसलिए नंद बाबा के गांव में ब्रज में रहने वाली गोपियों की चरण की एक धूल भी उसी में वंदना करता हूँ, गोपियों की नहीं समर्थ नहीं, राधा जी की तो बात ही क्या, उस स्थान को नहीं प्रणाम करता, गोपियों की चरण की धूली को और भी जिस दिशा में धूली आ रही है उसमें उनको प्रणाम करता, बहुत सी प्रार्थना यहाँ पर गोपियों की महिमा को उन्होंने समझा और प्रार्थना की, आसाम हो चरण रेणु इत्यादि। इसके बाद में उद्धव जी यहीं पर घाट गुल्म लता बन करके यही उद्धव कुंड के पीछे उधर में है कुसुम सरोवर भूसी के में हो रहा है। जब कृष्ण की लीला समाप्त हो गई कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और उद्धव को कहा कि तुम अभी रहो यहीं, तो उद्धव जी वहीं पर आ गए वो ये घात के रूप में। कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाथ जब मथुरा में आए और परीक्षित महाराज जी ने उनको परीक्षित महाराज के पुत्र ने परीक्षित महाराज को आए परीक्षित महाराज जी परीक्षित महाराज यहाँ आए और उनको यहाँ का राजा बनाया बज्रनाथ को और बोले तुमको जो जो चीज की जरूरत है मैं खुद दूंगा। ब्राह्मणों को और सब लोगों को मथुरा में बसाया। सुना तो उजार हो गई और कृष्ण की जितनी भी जो प्रेसियां थी द्वारका वाली उन सबको लेकर के जहाँ जहाँ पर कृष्ण की कोई भी लीला हुई थी वहाँ पर एक एक सिंह स्थापन किया। एक गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, हरदेव जी, गोविंद देव, बलदेव और ये सब कुंड देख रहे हैं, ये सब उन्हीं बद्रनाथ का स्थापन किया हुआ है कृष्ण की लीला की स्मृति के लिए। तो उन्होंने सांदिल्य ऋषि के द्वारा परीक्षित महाराज जी ने उनसे प्रार्थना की और सांदिल्य मुनि आकर के बद्रनाथ के द्वारा ये सब काम कराया। तो जब यहाँ पर आए तो उद्धव जी को दर्शन करना चाहूँ उन लोगों ने। बद्रनाथ, परीक्षित महाराज जी ये सब सांदिल्य ऋषि के आदेश से यहाँ पर कीर्तन करना आरंभ किया जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं। उस समय में कीर्तन करते 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 देखा इंद्र इत्यादि देवता लोग आ गए, अर्जुन इत्यादि आ गए, द्वारका के परिकर सब लोग यहाँ पर उपस्थित और बहुत जोर से कीर्तन होने लगा। और देखते देखते उद्धव जी घाट से निकल करके और इस स्थान पर आए। उद्धव जी इस कीर्तन में सम्मिलित हुए और ऐसे वो नृत्य करने लगे भाव के साथ में कीर्तन के एकदम क्या कहते हैं भाव अवस्था में पहुंच गए। और उस समय में कृष्ण अपने परिकरों के साथ में ब्रजवासी परिकरों के साथ में अपनी लीला को प्रकट किया और उद्धव जी कृतार्थ हो गए उसको देख करके और सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे कृष्ण की ये ब्रज की लीला भी दर्शन करने का राधा कृष्ण दर्शन करने का सौभाग्य इसी स्थान में हुआ। इसलिए बद्रनाथ जी ने इस स्थान पर विशेष करके ये कुंड को प्रकाश किया जो इस लीला की स्मृति बनी रहे। थोड़ी देर के बाद में लीला अंतर्ध्यान हो गई। उद्धव जी होश में आए, लोग पोत करके रोने लगे। थोड़ी देर के बाद उद्धव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। अब रहे परीक्षित महाराज जी और द्वारका की राजनी अब तो रोने लगे सब। ऐसे ही उद्धव कुंड है हम यहाँ का जल स्पर्श किया यहाँ की महिमा बोली आप लोग उसको स्मरण करेंगे। गोवर्धन आने का परिक्रमा का फल यही है। गोपियों के चरणों में अनुराग हुआ, राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग हुआ। उद्धव जी को जो गोपियों से नहीं मिला हम लोग उसकी भी प्रार्थना करें। इसलिए उद्धव जी हमारे ऊपर में करुणा करें, राधा कृष्ण करें, ये कुंड उद्धव जी के रूप में ये कृपा करें कि हम लोग के अंदर में भी ऐसी भावना आए कि लोग उत्पन्न हो। अब बहुत बेला हो गया है, भूख भी अब देखते हैं कि अब ऊपर से नीचे आने लग गई है, फलने लगी है। अब हम लोग चले वहाँ पर कुछ प्रसाद ले जाने के लिए और रावण से शुक्र करने के लिए और उनको प्राप्त करके सीता जी को फूल बन रहा है और पत्थर कहाँ से जा रहे हैं? हिमालय से, विंध्याचल से, पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों से लाखों करोड़ बंदर वहीं से उठते हैं और वहाँ जाकर के वहाँ से पत्थरों को उठा करके वहाँ ला रहे हैं। हनुमान जी वहाँ से कूदे और पहुँच गए हिमालय में और वहाँ से उनके पुत्र, किसके पुत्र? लोण के पुत्र उनको उखाड़ लिया
और सुकुमार उनके बेटे हैं और सब जगह हरियाली है, जल तो प्राप्त है, मानसी गंगा और ये सब जो कुछ देख रहे हैं इसके चारों तरफ में सब गोवर्धन के अंतर्गत, इसलिए उखुए को उखाड़ लिया हनुमान जी ने और हथेली पर ले करके जब यहाँ पर आए तो रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत यहाँ आया, बोला कि हनुमान जी आप यहाँ पर पत्थर रख दीजिए, अब जरूरत नहीं है, पुल बन चुका है, इसलिए रामचंद्र जी ने आदेश दिया है कि जो जहाँ पर पत्थर उठा करके ला रहे हैं अब वहीं पर रख दीजिए। हुआ क्या, गिरिराज कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, जब यहाँ पर आए हनुमान उनको लेकर के तो उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण से मैं यहाँ छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए आप अवश्य कोई व्यवस्था करें जो मुझको इसी ब्रज में रखा जाए और नहीं तो मैं खुद ही यहीं पर उतर जाऊंगा, फिर कोई नहीं उठा सकता है, इसलिए हनुमान जी ने उनको यहीं पर रख दिया, तब से यहाँ हनुमान जी। और दूसरी कथा एक और है, काशी के एक बड़े भारी तपस्वी थे पुलस्त ऋषि जी, उन्होंने देखा कि ब्रजमंडल तो बड़ा सुंदर सुहावना और बड़ा हरा भरा है किंतु काशी तो उजड़ी हुई है, गंगा जद्यपि है मरुभूमि सी है, पेड़ पौधे नहीं है, न पहाड़ है न कुछ है, न सरोवर है न और कुछ है, एक तरफ से गंगा जी बह रही है। सचमुच में जब हम लोग काशी में जब हम लोग गए एक बार कुछ दिन पहले तो नौका में चढ़ करके जा रहे थे, देख रहे थे, देखा वहाँ पर गंगा के किनारे मरुभूमि से बन गई है और एक साथ में 50 सिताएं जल रही है, एक दो नहीं देखा था, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका उस घाट में 50 सिताएं जल रही है फट 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 कर और उसमें लाल नीले ये सब रंग रक्त जो चल रहा है ना इसे सब लपटे निकलते हैं, इसी काशी में लोग आते हैं, कहा हमारा ब्रजा देखो जमुना की और कहा यहाँ की शोभा, तो उसी ने देखा और देख करके बोले मैं इस यहाँ पर कोई यदि पर्वत ले आता और पूरी हरी भरी यहाँ पर काशी हो जाती तो सुंदर में ये यथार्थ में ये स्वर्ग से भी बड़ी सुंदरी हो जाती, इसलिए वहाँ पर गए द्रोणाचल को देख करके उनके मुख में पानी भर आया, देखा जी समान सुंदर, उनके पिताजी से कहे आप जानते हैं मैं ऋषि हूँ, विश्वामित्र जी ने दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आए थे और यदि नहीं देते तो अभी सम पाप कर लेते, इसी तरह से मैं भी आपके बेटे को मैं मांग रहा हूँ, आप यदि दीजिए मैं सब आपको जला करके खत्म कर दूंगा, डर गए वो, बोले ये सचमुच में बड़ा तेजस्वी ऋषि है, अच्छा हमारे पुत्र को तुम मना लो, पुत्र के पास में गए गिरिराज गोवर्धन के पास में, बोलिए देखो तुम्हारे पिताजी ने आदेश दिया है तुमको हम काशी में ले जाएंगे शंकर के निकट में, तुम हमारे साथ में चलो और यदि नहीं चलता तो मैं तुम्हें जला दूंगा, उन्होंने कहा कि भाई जलाओ सलाओ मत हमको, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक शर्त है बीच में कहीं ना मत रखना और अपवित्र होकर के हमको मत उठाना, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा, संजय मत ऐसी बात होगी मैं एक ही साथ ले चलूंगा और पूरे ब्रह्मचर्य के साथ करूंगा, पवित्र रह करके स्नान करके मैं तुमको ले जाऊंगा, बीच में कहीं नहीं उतारूंगा, तो यदि उतार दिया तो मैं वहीं रह जाऊंगा, ये ठीक है। जब यहाँ आए गिरिराज गोवर्धन ने जिन्हें ऐसी प्रेरणा की लग गया उनको लघु शंका लग गई, बड़ी जोर से हिसाब करने की लालसा हुई और ऐसा हुआ जैसे उनको निकट रक्त दिया और रक्त पेशाब करने लगे, घंटों लग गए करते 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 बंद ही नहीं हो, गिरिराज जी आराम के साथ से यहाँ पर बैठ गए, कहा जब मैं जरा सो लू तो बस वो सो गए, और आगे की तरफ उधर में विश्राम कर रहे हैं, जब वो स्नान करके पुनः आए बोले कि अब तो चलो मैं पवित्र होकर के आया, तो ये आपको याद नहीं है जो मैंने कहा था कि जहाँ आप दो भगवान थे उसको आ गई,
अब मैं नहीं उठता। मैं नहीं चलूंगा, मैं स्नान करके पवित्र होकर के आया हूँ, आपसे यही शर्त थी, अब मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा। तो
यात्रा आरंभ होती है, बृहद भगवतामृत में ऐसा बतलाया गया, यात्रा आरंभ होती है क्या था असम वाला, असम का कामाख्या देवी से, कामाख्या देवी का आराधक, दुर्गा देवी का आराधक कोई, उसको इच्छा हुई भजन करने की, रुपये पैसे की जरूरत थी, लड़की की शादी करना है, घर बनाना है, दान दहेज देना है, इसलिए पैसे की जरूरत, वो चला गया था। तो इधर ही का मथुरा का या गोवर्धन, वही गोवर्धन इत्यादि का रहने वाला माथुर ब्राह्मण था, कहा वहाँ के लोग सब सब छोड़ छाड़ करके आते हैं भजन करने के लिए, और यहाँ के आदमी रुपया कमाने के लिए देवी के धाम ले जाता है, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आए यहाँ पर भजन करें, और यहाँ वाले क्या करते हैं, एक एक पैसे के लिए भटकते भटकते उस देवी के धाम में कहाँ कहाँ पर पहुँच जाते हैं, गया में भी जाते हैं, पिंड भी ले जाते हैं, तो यहाँ पर तो वहाँ से चले गंगा सागर पहुँचे, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, मैंने जो जाएगा फिर लौट कर वो नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, जब जाएगा वहाँ पर स्नान करने के लिए तो केवल छत्ती छत्ती चारों तरफ में मलमूत्र वो रहता है, वो मूर्ति के ऊपर, अब बाबा आप नहीं जाए, कान पकड़ता है जब, मैंने कर्म मार्ग है, ते तंग स्वर्गलोकम विशालम सीने पुण्य मत्स्यलोकम, वहाँ पर कंबल बट रहा है, वस्त्र बट रहा है, खिचड़ी बट रही है, यही सब बचता है, किस लिए, पुण्य हमको, तो ये क्या चीज है, ये मलमूत्र के ही समान है, उसमें फिर से स्नान करते हैं। इसलिए गंगा सागर में एक आदमी एक बार जाकर के, वैष्णव लोग तो जाते ही नहीं, बड़े मुश्किल से कोई एक भला भूला भटका आदमी वैष्णव वहाँ जाए, तो वहाँ पर स्नान कर लिया, कर्म मार्ग में फंस जाता है, बड़ी मुश्किलों से साधुओं का संग हो गया, अरे ये तो बहुत ही बुरा मार्ग है, तो वहां से चलता है, चलते चलते गया धाम में पहुंचता है, वहां पर एक कर्मनाशा नदी है, कर्म को नाश करने वाली है, क्योंकि वहां पर भगवान का चरण कमल है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने दिखलाया हम पिंडदान करने के लिए अपने पितरों को उद्धार करने के लिए जाते हैं, किंतु मिल गए ईश्वरपुरी बाजी, कहा आज मैंने अपना हृदय इत्यादि जो कुछ था आपके चरणों में समर्पण कर दिया, अब तो आप हमको संसार से पार कीजिए। साधु संघ का फल यह है कि पिंड देने से केवल वही व्यक्ति का उद्धार होता है जिसको पिंड दिया जाता है, और साधुओं के संग से क्या होता है, उसके कोई पितृगण कोई पिंड पिंड नहीं, इसलिए ज्ञान जब चलते हैं तो भगवान की कृपा से उनके चरण कमलों को स्पर्श करके कर्मनाशा में स्नान करके सब कर्म धर्म जो कुछ वहीं पर छोड़ देते हैं, और वहीं से ज्ञान मार्ग आरंभ हो गया। अब काशी के निकट हम आ रहे हैं, काशी में जाना खोज चाहते, काशी में प्रवेश मत करना, काशी को पास लेकर के चले आओ, और यदि काशी में गया तो फांसी हो जाएगी, फिर वहाँ से कभी सदा के लिए उसी में फंस जाएंगे, नित्य के लिए वहीं पर रह जाएंगे, इसलिए हमको मुक्ति फुक्ति की जरूरत है, मुक्ति तो अपने आप आ जाएगी भगवान की सेवा करने, इसलिए मुक्ति की खबरदार कोई कामना ना करे। इसलिए काशी में मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, किस चीज की, क्या मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, अरे तुम भगवान के सेवक हो, जितने आदमी हैं सभी कृष्ण के दास हैं, कृष्ण सत्ती के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण का, इसे चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में वहाँ काशी में जाकर के झट एक दिन के बाद में तुम भगो वहाँ से, वहाँ पर मत रहना,
दुर्गा देवी ने स्वयं कहा महेश्वर यहाँ पर अधिक दिन बन रहो अन्यथा मुक्ति में तुम्हारा लय हो जाएगा, ब्रह्म में सदा के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुक्ति नहीं थी। काशी को दाहिने रख करके और वहां से आगे बढ़ जाओ। अब आया त्रिवेणी, त्रिवेणी में गंगा जमुना की धारा सरस्वती की धारा मिलती है, वहां जाओ। वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग मार्च के महीने में अभी तपस्या करेंगे, स्नान करेंगे। परमाणु संप्रदाय के अधिकांश समुदाय के साधु लोग जाएंगे, कल गौड़ीय वैष्णव लोग रूप गोस्वामी का दर्शन करने वहाँ जाएंगे, क्योंकि धनी माधव इत्यादि का दर्शन नहीं करते। जहाँ पर महाप्रभु जी रूप को शिक्षा दी थी उनकी चरण की धूलि वहाँ लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो वहाँ पर सुविधा नहीं होगी, भक्ति तो होगी वहाँ, हो सकती है किन्तु वैकुंठीय भक्ति होगी, लक्ष्मी जी की सेविका बन करके वहाँ पर रहना पड़ेगा, उसमें ऐश्वर्य भाव है। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति देने के लिए आए वो नहीं मिलेगी, इसलिए वैष्णव लोग वहाँ पर बेणी माधव चतुर्भुज है, वो बेणी माधव नहीं मत समझिए, ये बेणी माधव है, बेणी माधव चतुर्भुज है, उनको प्रणाम कर लो आगे चलो। एक महीना में जरूरत नहीं है वहां रहने की, अन्य तो उन लोगों का संग होगा, आप नारायण में ही उपासना लग जाएगी, इसलिए आगे बढ़ो। रूप की शिक्षा कुछ रूप बताने के चरणों में रख करके थोड़ी सी सीखो आगे चलो, चलते 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 मथुरा में आए, बड़े सौभाग्य की बात है। वहां पर स्नान करना पड़ेगा विश्राम घाट में, इसलिए ऐश्वर्य का जो भाव है वो दूर हो जाए। कृष्ण की वह भक्ति जिसमें प्रेम माधुर्य पूर्ण प्रेम नहीं है उसे ब्रज का भाव नहीं आता। कृष्ण को वशीभूत कोई भक्ति नहीं कर सकती है यदि उसमें ऐश्वर्य भाव है, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है, सर्वेश्वर है, तो कृष्ण प्रसन्न होकर के बैकुंठ की ब्रज का भाव नहीं है। इसलिए वहां विश्राम घाट में इन सबको स्नान करके विश्राम दे दो, आप यहीं रहिए और सीधा कहाँ चलिए,
वहां से
आगे बढ़िए, सबको विश्राम घाट में सबको प्रणाम करके, कृष्ण मेरे प्रिय सखा है, कृष्ण मेरे प्यारे बेटे हैं, मेरा बेटा है यशोदा जी का भाव, और गोपियों का तो भाव, मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरा है, ये तीन भावों से प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि कृष्ण मेरे हैं, या मदीय भाव कृष्ण में, ये चैतन्य महापुरुष जी की शिक्षा। यहां से गोकुल में पहुंच जाइए, गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा में आंशिक जन्म हुआ, वो प्रकट हुए, और गोकुल में क्या हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, वहां पर यशोदा मां जी ने बांधा, नमामि ईश्वरम ये स्वयं भगवान है, वो हो भगवान, सब कारणों के कारण है, सब ईश्वरों के भी सब स्वयं सर्वश्रेष्ठ है, किंतु यशोदा मैया उनको बांध लेती है अपने प्रेम से, उसको दूसरा कोई सखा लोग खोलते रह गए, सखा तक नहीं खोल सके तो और लोगों की तो बात क्या, इसलिए कृष्ण यहाँ पर वशीभूत हो गए और गोकुल से वृंदावन में आई। कृष्ण ने सहज सिंह वर्ष तक वहां लीला की और इसके बाद में आए, कृष्ण बंधे किंतु थोड़ी देर में ही नंद बाबा ने खोल दिया, और कृष्ण ऐसा बनना चाहता है जब हमारा बंधन सदा के लिए ही बना रहे, तब वो वृंदावन में आए और राक्षस स्थली में गोपियों ने राधा जी के साथ उनका पक्का गठबंधन कर दिया, तब वो राधा दामोदर हो गए, यहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते रात वहां पर हुआ पंचित पट में, किंतु पंचायती रात भी, पंचायती रात माने क्या, उसमें सब प्रकार की सखियां सदाई,
पुरुष एक भी नहीं गया। एक जाने की चेष्टा की, गोपिया ने उसको कान पकड़कर ऐंठ बिहार गुलजे से मुख फुला दिया। वो कौन है? गोपीश्वर। इसलिए और कोई पुरुष नहीं गया, केवल यही गए गोपिया सब रहे। किंतु पंचायत सब प्रकार की गोपियां, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, काय व्यूह, श्रीमती राधिका इत्यादि यही सब रही। किंतु सभी लोग रास्ता हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किंतु मेरे मन को लुभाने वाला उतना नहीं हुआ। तब वो वृंदावन से गोवर्धन में आए। गोवर्धन में जा चंद्र सौर में ले गया, जहाँ पर चांद 1000 चतुर्युगी वहीं पर खड़ा रहा, वो चंद्र सौर। और पैठा देखा, राधा जी को देख करके उनके दोनों हाथ चले आए। और गोपियों के लिए नहीं, किंतु राधा जी को देखते ही ऐसा हो। राधा जी को मिले और कृष्ण उनके निहोरा करने लगे मान को तोड़ने के लिए। स्मर करल अखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि देहि तौपत। आप अपना मान हमको थोली में बिछा दीजिए, मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ। इस मान के लिए मैं बहुत मर रहा, आप हमारी रक्षा कीजिए। हृदय में आग लग रही है। कैसी आग? दावालल से भी अधिक। स्मर करल अखंडनम, यह स्मर है भी सर्प कैसा, समस्त विश्व के साथ मिलकर के भी उनको विष नहीं होगा, उस तरह से राधा जी के मान में है। इसलिए उसको बुझाने के लिए साहब को राधा जी के चरणों में सिर रख दिए। वहां से भी ये श्रेष्ठ स्थान है, अब इसे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है।